राम 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 पराकीर्तन मद्बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् मह प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमोस्तु श्री परमात्मने श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण। भगवान की कृपा सु पिता दिन अपां साधक संजीवनी री बातां सुनी कई वहां पर विचार करियो। आज साधक संजीवनी सप्ताह रे आखिरी दिन में साधक संजीवनी री जो विषय सूची है वह आपां पढ़ना और सुना। इमें सगले साधक संजीवनी आ गई ग्रंथ में आखिर में या कटे ही सारांश दे दियो जावे है जो श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में संक्षेप में रामायण बता दी काकभूषुंडी रामायण। इन्हें श्रीमद भागवत रे आखिर में भागवत रो विषय बता दियो कि पहला कहीं कहीं विषय हो तो यूं वो विषय बता देने सु वो ग्रंथ एक प्रकार सु पूरो दिख जावे। तो आपा आ विषय सूची अब आपा पढ़ना सुना तो अपने साधक संजीवनी में कई कई चीजा है वे अपन देख जैसे भगवान अपारे वास्ते और जीता कलजुगी जीव है सगला जीवा वास्ते ही और एक खजानो ओ बनायो है। खजाने में तरह तरह चीजा वे धन संपत्ति हीरार मोतीर ए तो वे ही है और भी खजाने में भंडार है वो तो खाने पीने री चीजा और बैठने रे सब तरह री चीजा री जरूरत पड़े प्रजा वास्ते। तो जो कोई राजा है और आप रे प्रजा वास्ते भंडार भर दिया कि प्रजा रे व्यवस्था करनी है सब चीजा री जरूरत पड़े तो सब तरह री चीजा भी भंडार में भर दी। अब कोई बिने देखना चाहे कि कई कई चीजा है प्रजा रे मन में आ जाए देखने री तो कोई राज रो आदमी आकर के दिखा देवे के ए चीजा है पर कई चीजा ऐसी वे जो को सगला रे सगली चीजा देखी उड़ी थोड़ी ज्ञानी कोनी वे कई तो सुनियोड़ी कोनी वे तो ऐसी चीजा भी खजाने में वे तो वे सरकारी आदमी बता दे कि आ चीज ई कामरी है आ ऐसी है फिर व्याख्या करके हाउल समझा दे अच्छा आ बात है तो ई और सगली चीजा ने सरकारी आदमी समझा देवे जन समझ में आ जावे नी तो यूं ओ भगवान ओ खजानो गीता जी रो अपने वास्ते रखियो है। तो भगवान रा आदमी आ गया सरकारी आदमी जो सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का है परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज है। ओ भगवान रो गीता जी रो जो खजानो है इन बताऊं नाला है और इनमें कई कई चीजा है कटे हीरा मोती है कटे माणकर कटे दूसरी चीजा वह सब चीजा ने बताऊं नाला है और कई बातें ऐसी जो आप जाना ही को नहीं सुनी को नहीं और कई देखते हुए भी जानते हुए भी जाना को नहीं तो वे भी अपन समझा दे कि आ चीज यू है मेरी व्याख्या करके सावल समझा दे जबकि आप जानता ही को नहीं वे बातें भी इन समझा दे। तो ऐसी असाधक संजीवनी है भगवान रो जो खजानो है भी ने बताऊं नाली आ साधक संजीवनी है। अब सरकारी आदमी आ जावे खजानो दिखा देवे और पी टाइम जका देखने वाला वे रुचि वाला देख लेवे पण हरदम तो कोनी रहे नी बटे आवर दिखा करके पाछा जाता रहे पण वे भी जाने कि भाई बाद में लोग सुन सी के खजाने में बहुत बढ़िया बढ़िया माल भरियो है तो दूसरा ने मन में आई देखनी और लेनी तो कबीर बार वास्ते व्यवस्था कर दो कि किसे किसी चीज किसी जगह रखी है बा कई चीज है यूं जो कोई लिख करके रख देवे नी के कोई अगर बाद में भी देखना चाहे तो पढ़ करके समझ ले कि आ चीज ऐसी है यूं तो यूं अब स्वामी जी महाराज लिख करके आ रख दी साधक संजीवनी के भाई बाद में भी थारे देखनो वे तो खजानो देख लो कई कई चीजा है बी टाइम जकी टाइम स्वामी जी महाराज उपस्थित था बी टाइम तो कोई भी जाकर के पूछ सकते हो लेकिन आज तो वह स्थिति कोनी आ बात में जानता ही हा जनी तो ऐ ग्रंथ लिखा करके रख दिया स्वामी जी महाराज रो इन्हें लिखाने में भाव हो कि अगर इन्हें मनुष्य पढ़े तो तत्व ज्ञान हो जावे परमात्मा रो ज्ञान हो जावे पीछे संतारी आ भावना है तो इन्हें कोई ध्यान से पढ़ सी तो बिने तत्व ज्ञान हो जासी संसार से वैराग हो जासी परमानंद री प्राप्ति हो जासी ऐसो इमें भाव है महापुरुषा रो तो इन वास्ते है असाधक संजीवनी बहुत बढ़िया इरी महिमा तो जीती के बा कमी है इमें कई कई वस्तु है तो विषय सूची पढ़ करके सुनावा आप धैर्य पूर्वक सुनो ज्यादा टाइम को नहीं लागे आप आ रहे ये घंटा भर रोज को टाइम है नी इर मई मई आई ऐसो अनुमान है सीताराम सीताराम श्री हरि विषय सूची श्लोक संख्या 20 में है विषय और आखिर में अटिन है पृष्ठ संख्या है दो कॉलम में पहला तो है प्राक कथन वीर बाद में पहलो अध्याय शुरू यो है पहला इनमें श्लोक संख्या लिखी है कि किसे श्लोक सो किसे श्लोक तक किसो विषय आयो है और बाद में सामने पृष्ठ संख्या लिख दी कि किसे पृष्ठ सो किसे पृष्ठ ताई ओ विषय है और बा में कोई विशेष बात आई मार्मिक बात आई वे भी इमें बता दी बारा भी पृष्ठ संख्या नंबर लिख दिया पृष्ठ वाला नंबर तो बोलने रो विचार को नहीं श्लोक संख्या बोलने रो विचार है देखनो वे तो श्लोक संख्या बई बता मिल जावे श्लोक ध्यान रखे श्लोक संख्या तो बहुत उपयोगी हो जावे आप सुबह 5 बजे जब नित्य स्तुति प्रार्थना वह गीता जी रहा 10 श्लोक वे तो बी टाइम भी आपने फलाणो अध्याय है फलाने श्लोक सु फलाने श्लोक ताई पाठ उसी तो आपा अध्याय खोल लेवा पृष्ठ संख्या श्लोक संख्या देख करके पाठ कर लेवा और आपा देखा कि पृष्ठ संख्या किसी देखने में तो पृष्ठ संख्या 16 है लेकिन इनमें गीता जी न्यारी न्यारी वेदन कई में तो किसी पृष्ठ पर वे वो विषय कई में किसी पृष्ठ पर वे लेकिन श्लोक संख्या में बदलाव को नहीं हुए तो श्लोक संख्या उपयोगी ज्यादा है और आवश्यक है तो श्लोक संख्या बोल देसा पहला अध्याय पहले श्लोक से 11वें श्लोक तक पांडव और कौरव सेना के मुख्य मुख्य महारथियों के नामों का वर्णन विशेष बात बारहवें से 19वें श्लोक तक दोनों पक्षों की सेनाओं के शंख वादन का वर्णन 20 से 27वें श्लोक तक अर्जुन के द्वारा सेना निरीक्षण 28वें से 47वें श्लोक तक अर्जुन के द्वारा कायरता, शोक और पश्चाताप युक्त वचन कहना तथा संजय द्वारा शोकाविष्ट अर्जुन की अवस्था का वर्णन। विशेष बात, पहले अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। पहले अध्याय में प्रयुक्त छंद। दूसरा अध्याय, पहले से दसवें श्लोक तक अर्जुन की कायरता के विषय में संजय द्वारा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का वर्णन। विशेष बात, ग्यारहवें से तीसवें श्लोक तक सांख्य योग का वर्णन। विशेष बात, मार्मिक बात, विशेष बात, प्रकरण संबंधी विशेष बात। 31 से 38वें श्लोक तक क्षात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करने की आवश्यकता का प्रतिपादन, प्रकरण संबंधी विशेष बात। 39वें से 53वें श्लोक तक कर्म योग का वर्णन, समता संबंधी विशेष बात। विशेष बात, मार्मिक बात, बुद्धि और समता संबंधी विशेष बात। 54वें से 72वें श्लोक तक स्थित प्रज्ञ के लक्षणों आदि का वर्णन, मार्मिक बात, अहंता ममता से रहित होने का उपाय। विशेष बात, दूसरे अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। दूसरे अध्याय में प्रयुक्त छंद। तीसरा अध्याय, पहले से 8वें श्लोक तक सांख्य योग और कर्म योग की दृष्टि से कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का निरूपण, मार्मिक बात, विशेष बात, साधन संबंधी मार्मिक बात। 9वें से 19वें श्लोक तक यज्ञ और सृष्टि चक्र की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का निरूपण, मार्मिक बात, कर्तव्य और अधिकार संबंधी मार्मिक बात, कर्तव्य संबंधी विशेष बात, मार्मिक बात, विशेष बात, मार्मिक बात। 20वें से 29वें श्लोक तक लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का निरूपण, परमात्म प्राप्ति संबंधी मार्मिक बात, विशेष बात, गुण कर्म विभाग को तत्व से जानने का उपाय, प्रकृति पुरुष संबंधी मार्मिक बात, विशेष बात। 30 से 35वें श्लोक तक राग द्वेष रहित होकर स्वधर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा, अर्पण संबंधी विशेष बात, कामना संबंधी विशेष बात। विशेष बात, राग द्वेष पर विजय पाने के उपाय, सेवा संबंधी मार्मिक बात, मार्मिक बात, स्वधर्म और परधर्म संबंधी मार्मिक बात। 36वें से 43वें श्लोक तक पापों के कारण भूत काम को मारने की प्रेरणा, कामना संबंधी विशेष बात, विशेष बात, मार्मिक बात। तीसरे अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। तीसरे अध्याय में प्रयुक्त छंद। चौथा अध्याय, पहले से 15वें श्लोक तक कर्म योग की परंपरा और भगवान के जन्मों तथा कर्मों की दिव्यता का वर्णन। विशेष बात, मार्मिक बात, विशेष बात, अवतार संबंधी विशेष बात, मार्मिक बात, विशेष बात। 16वें से 32वें श्लोक तक कर्मों के तत्व का और तद अनुसार यज्ञों का वर्णन है। विशेष बात, मार्मिक बात, विशेष बात, मार्मिक बात, विशेष बात। 33वें से 42वें श्लोक तक ज्ञान योग और कर्म योग की प्रशंसा तथा प्रेरणा। ज्ञान प्राप्ति की प्रचलित प्रक्रिया, विशेष बात। चौथे अध्याय के पद अक्षर और उवाच, चौथे अध्याय में प्रयुक्त छंद। पांचवा अध्याय, पहले श्लोक से छठे श्लोक तक सांख्य योग तथा कर्म योग की एकता का प्रतिपादन और कर्म योग की प्रशंसा। मार्मिक बात, विशेष बात। सातवें से बारहवें श्लोक तक सांख्य योग और कर्म योग के साधन का प्रकार, विशेष बात, मार्मिक बात। तेरहवें से 26वें श्लोक तक फल सहित सांख्य योग का विषय है, समता संबंधी विशेष बात। 27वें से 29वें श्लोक तक ध्यान और भक्ति का वर्णन है। पांचवें अध्याय के पद अक्षर और उवाच, पांचवें अध्याय में प्रयुक्त छंद। छठा अध्याय, पहले से चौथे श्लोक तक कर्म योग का विषय और योगारूढ़ मनुष्य के लक्षण, विशेष बात। पांचवें से नौवें श्लोक तक आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा और सिद्ध कर्मयोगी के लक्षण, आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा और सिद्ध कर्मयोगी के लक्षण। उद्धार संबंधी विशेष बात, विशेष बात। दसवें से पंद्रहवें श्लोक तक आसन की विधि, फल सहित सगुण साकार के ध्यान का वर्णन, विशेष बात। सोलहवें से 23वें श्लोक तक नियमों का और फल सहित स्वरूप के ध्यान का वर्णन, विशेष बात। 24वें से 28वें श्लोक तक फल सहित निर्गुण निराकार के ध्यान का वर्णन, ध्यान संबंधी मार्मिक बात, परमात्मा में मन लगाने की युक्तियां। 29वें से 32वें श्लोक तक सगुण और निर्गुण के ध्यान योगियों का अनुभव, सगुण और निर्गुण के ध्यान योगियों का अनुभव। 33 से 36वें श्लोक तक मन के निग्रह का विषय, मार्मिक बात। 37वें से 47वें श्लोक तक योग भ्रष्ट की गति का वर्णन, भक्ति योगी की महिमा, विशेष बात, मार्मिक बात, विशेष बात। छठे अध्याय के पद अक्षर और उवाच, छठे अध्याय में प्रयुक्त छंद। सातवां अध्याय, पहले से सातवें श्लोक तक भगवान के द्वारा समग्र रूप के वर्णन की प्रतिज्ञा करना तथा अपरापरा प्रकृतियों के संयोग से प्राणियों की उत्पत्ति बताकर अपने को सबका मूल कारण बताना, विशेष बात। शरणागति के पर्याय, ज्ञान और विज्ञान संबंधी विशेष बात, विशेष बात। आठवें से बारहवें श्लोक तक कारण रूप से भगवान की विभूतियों का वर्णन, विशेष बात। तेरहवें से 19वें श्लोक तक भगवान के शरण होने वालों का और शरण न होने वालों का वर्णन, विशेष बात। मार्मिक बात, महात्माओं की महिमा। 20वें से 23वें श्लोक तक अन्य देवताओं की उपासनाओं का फल सहित वर्णन है, विशेष बात। 24वें से 30वें श्लोक तक भगवान के प्रभाव को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की प्रशंसा तथा भगवान के समग्र स्वरूप का वर्णन, समग्र रूप का वर्णन। भगवान के प्रभाव को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की प्रशंसा तथा भगवान के समग्र रूप का वर्णन, विशेष बात। भगवान के समग्र रूप संबंधी विशेष बात, अध्याय संबंधी विशेष बात। 7वें अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। 7वें अध्याय में प्रयुक्त छंद, 7वें अध्याय का सार। 8वां अध्याय, पहले से 7वें श्लोक तक अर्जुन के 7 प्रश्न और भगवान के द्वारा उनका उत्तर देते हुए सब समय में अपना स्मरण करने की आज्ञा देना, विशेष बात, मार्मिक बात, विशेष बात, स्मरण संबंधी विशेष बात। 8वें से 16वें श्लोक तक सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार की उपासना का फल सहित वर्णन, विशेष बात। 17वें से 22वें श्लोक तक ब्रह्मलोक तक की अवधि का और भगवान की महत्ता तथा भक्ति का वर्णन, विशेष बात। 23वें से 28वें श्लोक तक शुक्ल और कृष्ण गति का वर्णन और उसको जानने वाले योगी की महिमा, विशेष बात। 8वें अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। 8वें अध्याय में प्रयुक्त छंद। 9वां अध्याय, पहले से 6ठे श्लोक तक प्रभाव सहित विज्ञान का वर्णन, ज्ञान और विज्ञान संबंधी विशेष बात, विशेष बात, मार्मिक बात, विशेष बात। 7वें से 10वें श्लोक तक महासर्ग और महाप्रलय का वर्णन, 11वें से 15वें श्लोक तक भगवान का तिरस्कार करने वाले एवं आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वालों का कथन तथा दैवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले भक्तों के भजन का वर्णन, 16वें से 19वें श्लोक तक कार्य कारण रूप से भगवत स्वरूप विभूतियों का वर्णन, 20वें से 25वें श्लोक तक सकाम और निष्काम उपासना का फल सहित वर्णन, विशेष बात। 26वें से 34वें श्लोक तक पदार्थों और क्रियाओं को भगवद अर्पण करने का फल बताकर भक्ति के अधिकारियों का और भक्ति का वर्णन, विशेष बात, मार्मिक बात, विशेष बात, मार्मिक बात, विशेष बात। 7वें और 9वें अध्याय के विषय की एकता, 9वें अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। 9वें अध्याय में प्रयुक्त छंद, 9वें अध्याय का सार। 10वां अध्याय, पहले से 7वें श्लोक तक भगवान की विभूति और योग का कथन तथा उनको जानने की महिमा, विशेष बात। 8वें से 11वें श्लोक तक फल सहित भगवत भक्ति और भगवत कृपा का प्रभाव, विशेष बात। 12वें से 18वें श्लोक तक अर्जुन के द्वारा भगवान की स्तुति और योग तथा विभूतियों को कहने के लिए प्रार्थना। 19वें से 42वें श्लोक तक भगवान के द्वारा अपनी विभूतियों का और योग का वर्णन है। विशेष बात 10वें अध्याय के पद अक्षर और उवाच, 10वें अध्याय में प्रयुक्त छंद। 11वां अध्याय पहले से 8वें श्लोक तक विराट रूप दिखाने के लिए अर्जुन की प्रार्थना और भगवान के द्वारा अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान करना। विराट रूप दिखाने के लिए अर्जुन की प्रार्थना और भगवान के द्वारा अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान करना। विशेष बात 9वें से 14वें श्लोक तक संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विराट रूप का वर्णन। 15वें से 31वें श्लोक तक अर्जुन के द्वारा विराट रूप को देखना और उसकी स्तुति करना। विशेष बात मार्मिक बात 32वें से 35वें श्लोक तक भगवान के द्वारा अपने अत्युग्र विराट रूप का परिचय और युद्ध की आज्ञा। विशेष बात 36वें से 46वें श्लोक तक अर्जुन के द्वारा विराट रूप भगवान की स्तुति प्रार्थना। अर्जुन के द्वारा विराट रूप भगवान की स्तुति प्रार्थना। 11वें अध्याय में 11 रसों का वर्णन। विशेष बात 47वें से 50वें श्लोक तक भगवान के द्वारा विराट रूप के दर्शन की दुर्लभता बताना और भयभीत अर्जुन को आश्वासन देना। विशेष बात संजय और अर्जुन की दिव्य दृष्टि कब तक रही। 51वें श्लोक से 55वें श्लोक तक भगवान के द्वारा चतुर्भुज रूप की महत्ता और उसके दर्शन का उपाय बताना। भगवान के द्वारा चतुर्भुज रूप की महत्ता और उसके दर्शन का उपाय बताना। विशेष बात 11वें अध्याय के पद अक्षर और उवाच, 11वें अध्याय में प्रयुक्त छंद। 12वां अध्याय पहले से 12वें श्लोक तक सगुण और निर्गुण उपासकों की श्रेष्ठता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के 4 साधनों का वर्णन। विशेष बात सगुण उपासना की सुगमताएं और निर्गुण उपासना की कठिनताएं। विशेष बात भगवत प्राप्ति संबंधी विशेष बात, कर्म फल त्याग संबंधी विशेष बात, साधन संबंधी विशेष बात। 13वें से 20वें श्लोक तक सिद्ध भक्तों के 39 लक्षणों का वर्णन। मार्मिक बात प्रकरण संबंधी विशेष बात, 12वें अध्याय के पद अक्षर और उवाच, 12वें अध्याय में प्रयुक्त छंद। 13वां अध्याय पहले से 18वें श्लोक तक क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ जीवात्मा, ज्ञान और ज्ञेय परमात्मा का भक्ति सहित विवेचन। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ जीवात्मा, ज्ञान और ज्ञेय परमात्मा का भक्ति सहित विवेचन। मार्मिक बात विशेष बात 19वें से 34वें श्लोक तक ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष का विवेचन। मार्मिक बात 13वें अध्याय के पद अक्षर और उवाच, 13वें अध्याय में प्रयुक्त छंद। 14वां अध्याय 1 से 4 श्लोक तक ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति। 5वें से 18वें श्लोक तक सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का विवेचन। सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का विवेचन, विशेष बात, मार्मिक बात, विशेष बात। 19वें से 27वें श्लोक तक भगवत प्राप्ति का उपाय एवं गुणातीत पुरुष के लक्षण, विशेष बात। 14वें अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। 14वें अध्याय में प्रयुक्त छंद। 15वां अध्याय, पहले से 6ठे श्लोक तक संसार वृक्ष का तथा उसका छेदन करके भगवान के शरण होने का और भगवत धाम का वर्णन, विशेष बात। वैराग्य संबंधी विशेष बात, संसार से संबंध विच्छेद करके, संसार से संबंध विच्छेद के सुगम उपाय, संसार से संबंध विच्छेद के सुगम उपाय, विशेष बात। 7वें से 11वें श्लोक तक जीवात्मा का स्वरूप तथा उसे जानने वाले और न जानने वाले का वर्णन, विशेष बात, मार्मिक बात। 12वें से 15वें श्लोक तक भगवान के प्रभाव का वर्णन, परमात्म प्राप्ति संबंधी विशेष बात, प्रकरण संबंधी विशेष बात, मार्मिक बात। 16वें से 20वें श्लोक तक क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम का वर्णन तथा अध्याय का उपसंहार, मार्मिक बात, विशेष बात। 15वें अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। 15वें अध्याय में प्रयुक्त छंद। 15वें अध्याय का सार। 16वां अध्याय, पहले से 5वें श्लोक तक फल सहित दैवी और आसुरी संपत्ति का वर्णन, मार्मिक बात। 6ठे से 8वें श्लोक तक सत्कर्मों से विमुख हुए आसुरी संपत्ति वाले मनुष्यों की मान्यताओं का कथन, सत्कर्मों से विमुख हुए आसुरी संपत्ति वाले मनुष्यों की मान्यताओं का कथन, विशेष बात। 9वें से 16वें श्लोक तक आसुरी संपत्ति वाले मनुष्यों के दुराचारों और मनोरथों का फल सहित वर्णन। 17वें से 20वें श्लोक तक आसुरी संपत्ति वाले मनुष्यों के दुर्भाव और दुर्गति का वर्णन, विशेष बात। 21वें से 24वें श्लोक तक आसुरी संपत्ति के मूलभूत दोष काम, क्रोध और लोभ से रहित होकर शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करने की प्रेरणा। 16वें अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। 16वें अध्याय में प्रयुक्त छंद। 17वां अध्याय, पहले से 6ठे श्लोक तक 3 प्रकार की श्रद्धा का और असुर निश्चय वाले मनुष्यों का वर्णन, मार्मिक बात, विशेष बात। 7वें से 10वें श्लोक तक सात्विक, राजस और तामस आहारी की रुचि का वर्णन, प्रकरण संबंधी विशेष बात, भोजन के लिए आवश्यक विचार। 11वें से 22वें श्लोक तक यज्ञ, तप और दान के 3-3 भेदों का वर्णन, सात्विकता का तात्पर्य, मन की प्रसन्नता प्राप्त करने के उपाय। 9 संबंधी विशेष बात, कर्म फल संबंधी विशेष बात। 23वें से 28वें श्लोक तक ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या और असत कर्म का वर्णन। 17वें अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। 17वें अध्याय में प्रयुक्त छंद। 18वां अध्याय, पहले से 12वें श्लोक तक संन्यास और त्याग के विषय में मतांतर और कर्म योग का वर्णन है। संन्यास और त्याग के विषय में मतांतर और कर्म योग का वर्णन है। मार्मिक बात, कर्म संबंधी विशेष बात। 13वें से 40वें श्लोक तक सांख्य योग का वर्णन है। मार्मिक बात, विशेष बात। 41वें से 48वें श्लोक तक कर्म योग का भक्ति सहित वर्णन है। विशेष बात, गोरक्षा संबंधी विशेष बात। स्वाभाविक कर्मों का तात्पर्य है, जाति कर्म से मानी जाए या जन्म से, नहीं, जाति जन्म से मानी जाए या कर्म से। विशेष बात, 49वें से 55वें श्लोक तक, 49वें से 55वें श्लोक तक सांख्य योग का वर्णन है। विशेष बात, 56वें से 66वें श्लोक तक भगवत भक्ति का वर्णन है। प्रेम संबंधी विशेष बात, विशेष बात। शरणागति संबंधी विशेष बात, शरणागति का रहस्य। 67 से 78वें श्लोक तक श्रीमद् भगवत गीता की महिमा। मार्मिक बात, 18वें अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। 18वें अध्याय में प्रयुक्त छंद आरती। नारायण नारायण। तो साधक संजीवनी री जो विशेष सूची है बहुत बढ़िया है, बड़े कामरी वस्तु है। इन्हें कोई ध्यान में रखे या पढ़े सुने नहीं तो साधक संजीवनी में कहीं है ये बातें सामने आ जाए। कई बातें ऐसी है जो ध्यान में रखने सु गीता सॉरी समझ में आ जाए, खुल जाए गीता। अब समता और बुद्धि इरो वर्णन है तो इरो खुला सो करके महाराज जी बता दियो। वो है वर्णन बुद्धि और समता संबंधी विशेष बात 132वें पृष्ठ पर है। तो आ थोड़ी आवश्यक लागी देना तो पढ़ सुनावा तो भेद समझ लेना सही छे। और दूसरे अध्याय रो 48वां श्लोक है, बीरी व्याख्या में है कि बुद्धि दो तरह की होती है, अव्यवसायात्मिका और व्यवसायात्मिका। अव्यवसायात्मिका और व्यवसायात्मिका जिसमें सांसारिक सुख भोग, जिसमें सांसारिक सुख भोग आराम मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने का ध्येय होता है वह बुद्धि अव्यवसायात्मिका होती है। गीता दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक, जिसमें समता की प्राप्ति करने का, अपने कल्याण करने का ही उद्देश्य रहता है वह बुद्धि व्यवसायात्मिका होती है। गीता दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक, अव्यवसायात्मिका बुद्धि अनंत होती है और व्यवसायात्मिका बुद्धि एक होती है। जिसकी बुद्धि अव्यवसायात्मिका होती है वह स्वयं अव्यवसायी अव्यवसित होता है। बुद्धयो व्यवसाय नाम 2:43 तथा वह संसारी होता है। जिसकी बुद्धि व्यवसायात्मिका होती है वह स्वयं व्यवसायी व्यवसित होता है। व्यवसितो ही सह 2:30 तथा वह साधक होता है। तो ये दो तरह की बुद्धियां बताई, एक तो व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि भी न कहवे है कि एक ही निश्चय कर ले कि मैंने तो परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, और आ बुद्धि रखे अटल रखे तो बिन्ने परमात्मा की प्राप्ति हो जावे। परमात्मा की प्राप्ति करने रो ओ साधन है, ओ उद्देश्य बना लेवे कि एक परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, संसारी भोगरी आरी प्राप्ति को नहीं करनी, मैंने तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो बा होगी एक निश्चय वाली व्यवसायत्मिका बुद्धि, और ऐसी बुद्धि वह साधक रही और इन पर अटल रहे जन वो सिद्ध हो जावे, बिन परमात्मा की प्राप्ति हो जावे। आ व्यवसायत्मिका बुद्धि हो जावे नहीं एक निश्चय वाली, तो वो खुद भी व्यवस्थित हो जावे, अटल एक जगह स्थिर हो जावे, फिर मेरी स्थिति परमात्मा में हो जावे, तो ओ वह है साधक। और दूसरो जकेरी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं है, वो संसारी वह, मेरो उद्देश्य है संसार रा भोग पदार्थ प्राप्त करने रा उद्देश्य वह, इन वास्ते मेरी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होकर के तरह तरह री वे और कई शाखा वाली वे, कनई कई चावे हर, कनई कई चावे हर, कनई कई निर्णय बदले हर, कनई कई निर्णय करे यू, तो दो तरह री बुद्धियां समझ लेनी चाहिए। और के समता भी दो तरह की होती है, साधन रूप समता और साध्य रूप समता। साधन रूप समता अंतःकरण की होती है और साध्य रूप समता परमात्मा स्वरूप की होती है। साधक पहला समता रो उद्देश्य बनावे है कि मने तो सम रहनो है, समता री प्राप्ति करनी है, और वो भी उद्देश्य सु साधन करे, तो साधन में कनई सिद्धि उजवे और कनई असिद्धि उजवे, तो भी सिद्धि असिद्धि में सम रहे, कनई वो सम रहे और कनई रह कोनी पावे, क्योंकि वो साधक है, कई बार भी भूल उजवे। और फिर समता रो उद्देश्य पक्को रखे और यूं साधन करतो रहे तो पछे भूलना मिट जावे और फिर सिद्धि असिद्धि में समता आ जावे, और समता आ जावे जना सम स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जावे। फिर बाद जो साध्य समता है वह समता आ जावे, साध्य रूप समता परमात्मा रे स्वरूप ने कहवे, चाहे परमात्मा कह दो, चाहे साध्य रूप समता कह दो, परम शांति कह दो, भगवान कह दो, ब्रह्म कह दो, कल्याण कह दो, मुक्ति कह दो, कई नाम इन साध्य रूप समता रहे, तो इन समता की प्राप्ति करनी है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है। परमात्मा की प्राप्ति हुई पचे भी साध्य रूप समता की प्राप्ति हो जावे, फिर मन बुद्धि में समता आ जावे। तो ऐ समता दो तरह की बताई, एक तो साधन वाली समता और एक साध्य रूप परमात्मा स्वरूप समता। तो साधन रूप समता तो अंतःकरण री वे, मन बुद्धि में आमे वे, और साध्य रूप समता में फिर खुदरी स्थिति हो जावे, वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जावे। तो यूं ऐ कई भेद समझ लेवे तो बहुत बढ़िया रहे। यूं ही आगे छठे अध्याय में आयो है कि अर्जुन जी पूछे है कि भगवान आप ओ योग बतायो नी, ध्यान योग सु परमात्मा री प्राप्ति वे, आप भगवान बताई, कर्म योग सु भी परमात्मा री प्राप्ति वे और ज्ञान योग सु भी वह, और बाई प्राप्ति ध्यान योग सु भी वे, और फिर ध्यान री विधि भी बताई, बीरा नियम भी बताया, प्रकार भी बताया, स्वरूप रो ध्यान बतायो, निर्गुण निराकार रो ध्यान बतायो, पहला सगुण साकार रो ध्यान बतायो, तो यूं ध्यान सु प्राप्ति हो जावे। जना अर्जुन जी पूछो कि भगवान आप जो समता पूर्वक वो योग कहो है नी, यूं परमात्मा की प्राप्ति हो जावे, जो तो ओ महाराज मन चंचल होने सु मैं स्थिति को नहीं देख पाऊं मैं, तो मन बड़ो चंचल है और चंचल मन हुआ सु पचे योगरी सिद्धि वे कोनी। आ तो बड़ी कठिन है, मतलब ओ मन बड़ो चंचल है। भगवान कहो कि ठीक है मन तो चंचल है, पन अभ्यास और वैराग्य सु इन्हें वश में करियो जा सके है। अब अट बात समझने रही है कि चंचलता और मन री चंचलता और मन ने वश में करनो ए दो बाता है। भगवान कहे है जकेरो मन वश में उग्यो बिना योगी की प्राप्ति सुगमता से हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, और जकेरो मन वश में नहीं है बिन मुश्किल है। तो अटे लोगारी दृष्टि जावे मन री चंचलतारी तरफ कि ओ मन चंचल है, ओ स्थिर हो जावे एकाग्र हो जावे तो परमात्मा री प्राप्ति हो जावे। बात ठीक है, लेकिन एकाग्रता होने से ही प्राप्ति कोनी वे, मन परमात्मा ने कोनी पकड़ सके, मन तो जड़ है बेचारो। परमात्मा री प्राप्ति मन सु संबंध छोड़ने सु वे, परमात्मा री प्राप्ति स्वयं ने वे, मन ने थोड़ी वे, मन तो जड़ है बेचारो, जो और शरीर जड़ है यूं ये मन और बुद्धि रे सब जड़ है। तो प्राप्ति खुद ने वे और खुद मन बुद्धि शरीर इंद्रियां सब सु संबंध छोड़ करके आंसू न्यारो होकर के परमात्मा सु मिले। वो मन चाहे चंचल है तो और चाहे एकाग्र है तो वो तो जड़ है, छोड़नी चीज है। इन वास्ते मन ने स्थिर करनो है वो ध्येय नहीं है, वो तो एक साधन है। कई जना इन्हें ध्येय समझ लेने कि मन एकाग्र करना है, पर एकाग्र करने से परमात्मा की प्राप्ति को नहीं है। तो परमात्मा की प्राप्ति किया वह है कि मन ने वश में करे जाना वह, मन ने वश में करना कहीं है कि संसार री आसक्ति मिटा देनी। संसार में जो राग है, प्रियता है, खिंचाव है, भोगा में जो आसक्ति है नी, आ मिटा देवे तो मन वश में हो जावे। और जब तक भोगारी आसक्ति नहीं छोड़े तब तक मन भी वश में कौन नहीं वे। क्यों नहीं वे कि मन तो बेचारो करण है, मन में बात ताकत को नहीं संसार ने छोड़ने री पकड़ने री, वो तो एक साधन है। जो कलम है तो आ कलम लिख सके, उल्टो लिख देवे कहीं सुल्टो लिख देवे, पर मुख्य तो लिखने वालों है नी, ऐसो ही ओ मन है। खुद अगर भोगाने छोड़नो चावे तो फिर मन में बात ताकत को नी जो ई स्वयं ने भोगा में ले जावे, इरो पतन कर देवे। और अगर खुद भोगाने छोड़नो नहीं चावे, संसार रो राग छोड़नो नहीं चावे, तो फिर मन भी बस में कोनी वे। इन वास्ते मुख्यता है खुद की, खुद विचार कर ले कि मने तो परमात्मा री प्राप्ति ही करनी है, संसारिक भोगारी प्राप्ति कोनी करनी, तो फिर मन बस में भी हो जासी और एकाग्र भी हो जासी। कि ओ बस में करनो और एकाग्र करनो, और फिर उदाहरण दियो महाराज कि जैसे पतिव्रता वे नी, बा मन ने एकाग्र कोनी करे पर मन वश में राखे, साधक है जको भोगारी जो इच्छा है, भोगा में जो आसक्ति है, बिने इतनी खराब समझे कोनी, बिने पतन करने वाली इतनी बुरी कोनी समझे जितनी बुरी है बा। अब परमात्मा की प्राप्ति कोनी उन देवे जन्म मरण में अनंत जलमसु ले जा रही है बा अशक्ति, तो इन्हें खराब को नहीं समझे। खराब क्या समझे कि जो कोई वैष्णव संस्कार वाला लोग बनी वे मांस भक्षण करे को नहीं, तो इन्हें नाम लेने बुरो समझे कि नाम ले लो थूको मुंडे यू वे बिने बड़ो खराब समझे। लेकिन भोग भोगने ने इतो खराब को नहीं समझे, जबकि भोग भोगने री आ रुचि है आ मांस भक्षण से भी ज्यादा पतन करने वाली है। मांस भक्षण करना खराब है, पाप है, लेकिन वो पाप तो भुगतिया सु मिट जासी, और भोगा में जो रुचि है आ रुचि जन्म जन्मांतर ताई भोगा में ले जाती रहसी और जन्म मरण देती रहसी, इन वास्ते आ ज्यादा पतन करने वाली है। लेकिन इन ज्यादा पतन करने वाली नहीं समझ करके भोगारी रुचि रखे भोग भोगे जना ओ मन वश में कोनी है। इमें लिखियो महाराज जी कि भगवान की तरफ चलने वाले वैष्णव संस्कार वाले साधकों की मांस आदि में जैसी अरुचि होती है वैसी अरुचि साधक की विषय भोगों में नहीं होती, अर्थात विषय भोग उतने निषिद्ध और पतन करने वाले नहीं दिखते। कारण कि विषय भोगों का ज्यादा अभ्यास होने से उनमें मांस आदि की तरह ग्लानी नहीं होती। मांस आदि सर्वथा निषिद्ध वस्तु खाने से पतन तो होता ही है, पर उससे भी ज्यादा पतन होता है राग पूर्वक विषय भोगों को भोगने से। कारण कि मांस आदि में तो यह निषिद्ध वस्तु है ऐसी भावना रहती है, पर भोगों को भोगने से यह निषिद्ध है ऐसी भावना नहीं रहती। इसलिए भोगों के जो संस्कार भीतर बैठ जाते हैं वे बड़े भयंकर होते हैं। तात्पर्य है कि मांस आदि खाने से जो पाप लगता है वह दंड भोग कर नष्ट हो जाएगा, वे पाप आगे नए पापों में नहीं लगाएगा, परंतु राग पूर्वक विषय भोगों का सेवन करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे जन्म जन्मांतर तक विषय भोगों में और उनकी रुचि के परिणाम स्वरूप पापों में लगाते रहेंगे। तात्पर्य है कि साधक के अंतःकरण में विषय भोगों की रुचि रहने के कारण ही वह संयत आत्मा नहीं हो पाता, मन इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाता, इसलिए उसको योग की प्राप्ति में अर्थात ध्यान योग की सिद्धि में कठिनता होती है। तो भोगों में राग रहने से मन नर ए इंद्रियां वश में को नीवे, और वश में नीवे जना जन्म जन्मांतर ताई भोगा में लगातो रहे, रुचि भोगा में लगाती रहे। इन वास्ते मन ने वश में करनो जरूरी है, राग मिटानो जरूरी है। एकाग्रता भी अच्छी है, लेकिन एकाग्रता सु परमात्मा री प्राप्ति कोनी वे, मन री एकाग्रता करने सु समाधि लागे। और वे समाधियां भी कई तरह री वे, विषय तो आयो है छठे अध्याय रे 36वें श्लोक में, और समाधि वाली बात भी देख पढ़ ले थोड़ी। छठे अध्याय रे 20वें श्लोक री व्याख्या, ध्यान योग में पहले मन को केवल स्वरूप में ही लगाना है यह धारणा होती है। ऐसी धारणा होने के बाद स्वरूप के सिवाय दूसरी कोई वृत्ति पैदा हो भी जाए तो उसकी उपेक्षा करके उसे हटा देने और चित्त को केवल स्वरूप में ही लगाने से जब मन का प्रवाह केवल स्वरूप में ही लग जाता है तब उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान के समय ध्याता ध्यान और ध्येय यह त्रिपुटी रहती है, अर्थात साधक ध्यान के समय अपने को ध्याता ध्यान करने वाला मानता है, स्वरूप में तद्रूप होने वाली वृत्ति को ध्यान मानता है और साध्य रूप स्वरूप को ध्येय मानता है। तात्पर्य है कि जब तक इन तीनों का अलग अलग ज्ञान रहता है तब तक वे ध्यान कहलाता है। ध्यान में ध्येय की मुख्यता होने के कारण साधक पहले अपने में ध्यातापन भूल जाता है, फिर ध्यान की वृत्ति भी भूल जाता है, अंत में केवल ध्येय ही जागृत रहता है। इसको समाधि कहते हैं। केवल ध्येय रहे बी टाइम, ध्येय यानी परमात्मा रो ध्यान करना है तो परमात्मा ही रहे। तो आज जो समाधि है इन्हें कि इसको समाधि कहते हैं, यह संप्रज्ञात समाधि है जो चित्त की एकाग्र अवस्था में होती है। इस समाधि के दीर्घ काल के अभ्यास से फिर असंप्रज्ञात समाधि होती है। इन दोनों समाधियों में भेद यह है कि जब तक ध्येय ध्येय का नाम और नामी नाम नामी का संबंध ये तीनों चीजें रहती है तब तक वे संप्रज्ञात समाधि होती है। इसी को चित्त की एकाग्र अवस्था कहते हैं। परंतु जब नाम की स्मृति न रहकर केवल नामी ध्येय रह जाता है तब वे असंप्रज्ञात समाधि होती है। इसी को चित्त की निरुद्ध अवस्था कहते हैं। निरुद्ध अवस्था की समाधि दो तरह की होती है, सबीज और निर्बीज। जिसमें संसार की सूक्ष्म वासना रहती है वह सबीज समाधि कहलाती है और सूक्ष्म वासना के कारण सबीज समाधि में सिद्धियां प्रकट हो जाती है। ये सिद्धियां सांसारिक दृष्टि से तो ऐश्वर्य है पर पारमार्थिक दृष्टि से चेतन तत्व की प्राप्ति में विघ्न है। ध्यान योगी जब इन सिद्धियों को निस्तत्व समझकर इनसे उपराम हो जाता है तब उसकी निर्बीज समाधि होती है, जिसका यहाँ इस श्लोक में निरुद्धम पद से संकेत किया गया है। ध्यान में संसार के संबंध से विमुख होकर एक शांति एक सुख मिलता है जो कि संसार का संबंध रहने पर कभी कभी नहीं मिलता। संप्रज्ञात समाधि में उससे भी विलक्षण सुख का अनुभव होता है। इस संप्रज्ञात समाधि से भी असंप्रज्ञात समाधि में विलक्षण सुख होता है। जब साधक निर्बीज समाधि में पहुंचता है तब उसमें बहुत ही विलक्षण सुख आनंद होता है। योग का अभ्यास करते करते चित्त निरुद्ध अवस्था निर्बीज समाधि से भी उपराम हो जाता है, अर्थात योगी उस निर्बीज समाधि का भी सुख नहीं लेता, उसके सुख का भोक्ता नहीं बनता। उस समय वह अपने स्वरूप में अपने आप का अनुभव करता हुआ अपने आप में संतुष्ट होता है। तो मन एकाग्र होने सु समाधि लागी, पर समाधि लागने पर भी भोगारी रुचि को नहीं मिटे। वो एक उदाहरण बतायो ने स्वामी जी महाराज, एक कोई समाधि लगाने वाला हो, एक ठाकरा ने क्यों के मैं समाधि लगा दे कित दिन तुम समाधि में बैठ जाओ तो खाण और पीण और वो कुछ नहीं। तो कह ठीक है समाधि में बैठ जा, कहीं देव के मने घोड़ो दे दो जना आ समाधि बताऊ कि घोड़ो दे देश जना क्या बैठ गया समाधि में बैठा जन सब पहले शरीर ने साफ कर ले वे आतार उपवास करके सब विकार बारे निकाल दे नहीं तो के आतार सड़ जावे। तो यो सब यो खाली करके बैठ गयो समाधि में और व्यवस्था कर दी भी रहे कि एक मकान सो चिना कर घुमटी बना करके बिम बिठा दियो और ऊपर सु भी नहीं हो सुरक्षित कर दियो, कोई वीरो कोई नुकसान नहीं करे यू। तो यू वो तो बैठ गयो और छह महीना री समाधि लगा लें, छह महीना कहीं ज्यादा बीत गया कहीं बट कोई शायद दूसरे राजा आक्रमण कर दियो जना वे राजा तो खत्म हो गया और फिर जमीन भी दूसरे री होगी। फिर पीढ़ियां बीत गई और बाद में बट कोई बात जमीन खोदी जना एक गुमटी निकली, गुमटी निकली आ कहीं है बिन तोड़ीर का बा ईंट पड़ी बीर माथे ऊपर तो समाधि खुल गई। समाधि खुली करे कहीं बस सावधानी सुबह कि वो तो आदमी है मेरी समाधि खुली तो खुलते ही बोलियो के लाओ राजन घोड़ा। अब कितना वर्षा ताई वो समाधि में बैठो है पीढ़ियां बीत गई कि आ कहीं बात घोड़े री जन बिन पिछली बात बताई कि फलाना राजा ठाकर साहब को हाथ जका मैंने घोड़ो दे कही कि बे तो इतना पीढ़ियां पहला हुआ है तो इतनी पीढ़ियां बीत जाने पर भी समाधि में बैठो बो पर मन री बा चाना कोनी मिट्टी घोड़े वाली बा वासना पड़ी है तो यू समाधि लगाने पर भी भोगानी वासना कोनी मिटे वे वासना मिट जावे जना निर्बीज समाधि वे भी में भी रस नहीं लेवे जन स्वरूप री प्राप्ति वे फिर परमात्मा री प्राप्ति हो जावे। तो ऐसी कई बात ध्यान में रख मैं सुन बहुत फायदा हुए। अब आप लोग टाइम हो गया जुलूस रो तो साधक संजीवनी सप्ताह रो आनंद सु आप शोभा यात्रा निकालो। सीताराम सीताराम।